اب یہاں جو نماز کا اثر بتایا گیا کہ نہ صلات تنہا، تنہا نہیں سے روکتی ہے، صلات وہی صلی جو صلی سے جلانے والی گناہوں کو، اور اسی طرح سے عاجزی پیدا کرنے والی، دونوں روٹ آپ کو پیچھے لکھائے ہوئے ہیں. اس کا اثر کیا ہے کہ فحش اور منکر زندگی میں نہیں آتا. ایمان والوں کا ٹیسٹ فحش اور منکر کا نہیں ہوتا. دے ڈونٹ لو دیز کائنڈز آف دی گیدرنگس. ان کو شرم آتی ہے، اپنے مقام سے گری بھی بات لگتی ہے کہ وہ کسی فحش اور منکر میں بیٹھیں اور وہاں باتیں کریں اور ایسے کام کریں کہ جس کے بعد اللہ کے ساتھ نگاہیں نہ ملا سکیں. شرم آئے ان کو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پانچ وقت نمازی بھی ہے، ابھی ہے، چلیں کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، غلطی ہوتی ہے انسان سے، شروع شروع کے دنوں میں باتیں چھٹتی ہیں، لیکن عادت نہیں ہوتی. ایمان والے کا دل لگتا ہی نہیں ان چیزوں میں. اور آہستہ آہستہ جتنی اللہ تعالیٰ سے معرفت زیادہ ہوتی ہے نا، اتنا اللہ تعالیٰ پر پھر پیار آتا ہے. پھر اس کی باتوں کو سن کر ایک بندہ اپنے آپ کو کس طرح لیتا ہے کہ میں اپنے رب کی باتوں کو مانتا ہی جاؤں گا، میں اس کے لیے دوسروں کو ناراض کیوں کروں، یا میں دوسروں کو کیوں خوش کروں اس کی ناراضگی کے لیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز پھر اس کو برائیوں سے روکتی ہے. چند روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی روشنی میں میں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہہ دیا گیا کہ ان الصلات تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ ہم سب سے کیا چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نمازی کی نماز نے اسے گناہوں اور سیاہ کاریوں سے باز نہ رکھا، وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. یعنی نماز پڑھ کے بھی جب گناہ نہیں چھوڑتے نا، تو اللہ سے دوری ہے، قرب کہاں ہوگا. ابن ابی حاتم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی، پوچھا کہ اس کی کیا تفسیر ہے، تو آپ نے فرمایا جسے اس کی نماز بے جا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی. روایت میں ہے کہ جو نمازی بھلے کاموں میں مشغول اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو، سمجھ لو کہ اس کی نماز اسے اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا جو نماز کی بات نہ مانے، اس کی نماز نہیں ہے. نماز کی بات کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہمیں بے حیائیوں سے، بدفعلیوں سے روکتی ہے. تو نماز کی تاج ہے کہ بندہ ان باتوں سے رک جائے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت شعیب کو ان کی قوم نے کس بات کا تانا دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ الصلاۃک تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے. اور ہر دور میں آپ دیکھیں گے نماز کا تانا ضرور ملے گا. حضرت سفیان اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم نماز حکم بھی کرتی ہے اور منع بھی کرتی ہے، کہ ہاں یس نماز واقعی روکتی بھی ہے اور حکم بھی دیتی ہے. اب نہ مانے تو پھر وہ ناراض ہوگی ہم سے. حضرت عبداللہ سے کسی نے کہا فلاں شخص بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا نماز اسے نفع دیتی ہے جو اس کا کہنا مانے. اللہ اکبر. مسند بزار میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا حضور فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا. ایسے کردار ہیں نا ہمارے ارد گرد بھی، غلط کام بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھوڑا دے گی. یہ نہیں کہ اب اس وجہ سے نماز چھوڑ دو کہ برے کام نہیں چھوڑا، پھر تو اور ہی دور کریں گے. پڑھتے رہے اگر اثر نہیں بھی ہو رہا، ایک وقت آئے گا کہ اس کا اثر ہوگا. کیونکہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی ذات بہت پیاری بات. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو پتہ ہے میرا بندہ مجھے کس نام سے پکارا ہے. ابو لالیہ کہتے ہیں کہ نماز میں تین چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو نماز نماز نہیں. کون سی؟ لکھ لیں اور ہم اپنی نمازوں کو اس پہ پرکھ لیں. نمبر ایک اخلاص اور خلوص، یعنی سنسیریٹی. لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. دوسرا خوف الہی، فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور تیسرا ذکر الہی، اللہ کا ذکر. اخلاص سے تو انسان نیک ہو جاتا ہے، اور خوف الہی سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ذکر الہی یعنی قرآن اسے بھلائی برائی بتا دیتا ہے، وہ حکم بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. ابن عون کہتے ہیں کہ جب تو نماز میں ہو تو تو نیکی میں ہے، اور نماز تجھے فحش اور منکر سے بچائے ہوئے ہے، اور اس میں جو کچھ تو ذکر اللہ کر رہا ہے وہ تیرے لیے بڑے ہی فائدے کی چیز ہے. حماد کہتے ہیں کم سے کم حالت نماز میں تو تو برائیوں سے ہی بچا رہے گا. یعنی کم از کم جتنی دیر نماز پڑھو اتنی دیر تو برائی نہیں کر پا رہے نا. हज़रत इब्ने अब्बास का एक कौल है कि जो बंदा याद इलाही करता है अल्लाह भी उसे याद करता है। कहाँ पढ़ा आपने? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, दूसरे पारे के शुरू में सूरत बकरा में। तुम अल्लाह को याद करोगे अल्लाह तुम्हें याद करता है। इसी तरह वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर का एक ये भी मानी बयान किया गया कि बंदा तो रब को याद करता ही है ना, अल्लाह का बंदे को याद करना इससे भी बड़ा है, ड्यूल है, म्यूचुअलिटी है इसमें। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरी तरफ चल के आओ मैं तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा, तुम मेरी बात मानो मैं तुम्हारी मानूंगा। ये कॉन्वर्सेशन कब होती है? जब हकीकत में किताब के साथ गहरा ताल्लुक जुड़ता है। और अगर हम अपनी नमाजों को देखें, अब हम सब अपनी नमाजों पे आ जाएं, हमारी नमाजें हमें क्या सिखाती हैं, क्या हालात हमारी नमाजों के, कभी सोचा हमने? रोना नहीं आता? अल्लाह का जिक्र तो छोड़िए, भूली बिसरी चीज़ें याद आती हैं नमाज में, गिले शिकवे याद आते हैं। और कभी अगर खुशकिस्मती से आंखों से आंसू निकल भी आए ना, तो किसी की कोई बात याद करके आते हैं, या कोई दुनिया का कोई गम याद आता है तो आंसू निकलते हैं। कब आखिरी बार नमाज में अल्लाह की याद से रो पड़े, छलक पड़े? आप इमेजिन करें, मैं हमेशा इस साइड पे आती हूँ तो मेरे जिम्मे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत अरसे के बाद माँ की आवाज़ सुनी बेटी ने, क्या फीलिंग होगी उस वक्त? कोई बहुत दूर का बिछड़ा हुआ है, वो जब सुनता है बात तो कैसा लगता है? बीवी शौहर दूर हैं तो कहीं बात का मौका मिल जाए तो क्या होगा? कहीं मोहब्बत होगी तो कहीं जज्बात होंगे तो कहीं रोना होगा ना। अब ये सब इंसानी जज्बे हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे मेरे रब से। तुम सब की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन रब की मोहब्बत सबसे ऊपर है। फिर तुम्हें मुझसे कोई अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जितना ज्यादा इंसान इस पे को अमल करेगा ना, आप देखिए कि छोटी सी बात है लेकिन ये बात आगे जाने ही नहीं दे रही। तिलावते कुरान और नमाज को कायम करना, ये दो मजबूत कर लीजिए, लोग आपसे छटते जाएंगे। वो आपसे गलत बातों की उम्मीद ही नहीं रखेंगे कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी नमाजों को जिंदा करें, रोकें। और इंशाल्लाह जब नमाज समझ के पढ़ेंगे ना तो फ़ायदा होगा। एक हदीस जिसने मुझे बहुत डराया था जब मैंने अपने इब्तदाई दिनों में ये हदीस पढ़ी थी कि नमाज में से सिर्फ उतना ही हिस्सा कबूल है, मा हज़रा फीही कल्ब, जिसमें हाजिर है तेरा दिल। बात समझ रहे हैं? आप इस क्लास में कितनी देर बैठते हैं? 4.5 घंटे आपकी हाजिरी लगती है आपके साइन इन और साइन आउट पे। इसके बाद तो कोई ये नहीं कहता कि आप हाजिर नहीं है, लेकिन आपकी इस क्लास के वक्त में से कितना वक्त आपका असल में लिखा जा रहा है अल्लाह के यहाँ, मा हजर फी ही कल्ब। यहाँ का साइन इन साइन आउट तो कोई इतना अहम नहीं लगता ना हमें, वहां का है। देर से आएंगे तो कितना छूटेगा, कितनी नेकियां जाया हो गई, कितनी दफा कुरान सुनना था पढ़ना था वो नहीं पढ़ सके, थोड़ी देर बैठे और बैठ के चले गए। लेकिन जब जो सुन के जिसमें अगर यहाँ तवज्जो कहीं और हो तो फिर वो बात जो है वो सामने नहीं आएगी ना। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को चेक करें। जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी मजबूत होगा। आज हम कहते हैं हम नमाजी भी हैं और दुनिया भी रखते हैं। दुनिया रखने का मतलब पता क्या? गुनाह भी करते हैं, सीधी सी बात जी, ये नहीं छूटते। दुनियादारी, दुनियादारी आज के लोग में लोग गुनाहों को कहते हैं, आपको पता है? सहाबा कराम कहते हैं कि जिन कामों को तुम आज हल्का जानते हो, और आपको तो सहाबा कब कहते थे ये बातें? अल्लाह के नबी के बाद ताबईन का जो दौर शुरू हो गया या सहाबा का आखिरी दौर था, तो कहते थे जिन बातों को आज तुम मामूली जानते हो, वल्लाही नबी सल्लम के दौर में हम उसको हलाक करने वाला समझते थे। किसी जगह आता है वल्लाही हम उस अमल को मुनाफकत समझते थे। और आज देखते अगर अबू बकर उमर उस्मान आज उम्मत मुस्लिम का हाल देखें तो हमारी तो वो नमाज में हमारा हाल हुलिया ही नहीं ठीक होता तो बाकी नमाज कहाँ होगी। अगर एक कैदी की तरह अपने आप को हम नमाज में नहीं पाते ना, इधर उधर से भाग भगा के जाए नमाज पे आए और आंखों से आंसू ही निकल गई, या कना बुदू या कनस्तैन, अल्लाह तू बस आज फिर मेरा पर्दा रख ले। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, रोएं तड़पें बेचैन हो, आप देखिएगा वो नमाज आपके दिल का बोझ हल्का कर देगी। लेकिन आज हम ऐसे खूबसूरत किस्म के नमाजी देखते हैं कि अल्लाह की बना फिल्में भी देखते हैं और मस्जिदों से निकलते हुए रास्ते में से साथ लेकर जाते हैं, और कहते हैं कि वीकेंड पे तो ज्यादा बिकती हैं। यानी एक ऐसी जगह थी कि जहाँ मस्जिद से साथ ही पाकिस्तानी स्टोर था, तो वहाँ फिल्में बेचते थे इंडियन उस दौर में लोग। तो किसी ने उनको समझाया कि देखो अल्लाह के बंदे, इस वक्त तो बंद कर दिया करो। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बिकती ईशा के बाद है और वीकेंड पे ज्यादा बिकती हैं। ये तब की बातें जब ये डाउनलोड नहीं थे करते, लोग खुद ही वीसीआर में जाके फिल्में देखते थे। कहते हैं इस दिन तो ज्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि जी नमाज तो पढ़ ली है, बस वीकेंड नाइट है, मजा करते हैं। अल्लाह अकबर, वला जिक्रुल्लाह ही अकबर। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। आपके सामने कुछ जिक्र के थोड़े से मजमूए। अपनी जुबान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तार रखें, और याद रखिए कि जिक्र सिर्फ ये जिक्र नहीं है जिसको आप अरबी में पढ़ते हैं। एक होता है जिक्र लफ्जों का, जो हम अज़कार की सूरत में किताबों में भी पढ़ते हैं, अहादीस से भी हमें पता चलता है। एक जिक्र होता है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना। आप कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार बिल्कुल अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक है, तो आप जिक्र की हालत में। आप घर साफ कर रही हैं, खाना बना रही हैं, और उस वक्त अगर आप जहन में वो सारी बातें रख रहे हैं जिसके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिक्र की हालत में। बंदा किताब भी ना उठाए, तस्बीह भी ना उठाए, फिर भी वो जाकिरीन में से है। कब? जब उसका दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा होता है। तो यहां आप देखिए कि अब कितना अहम हुक्म है जो हम पढ़ रहे हैं, और फिर पीछे याद कर लीजिए कि सूरत अल-अनकबूत उस दौर की सूरत है जहां घर घर में लड़ाइयां पड़ी हुई थी। कहीं किसी की मां नाराज है, तो कहीं शोहर धमकियां दे रहा है, तो कहीं बच्चे बुरा कह रहे हैं, कोई भला कह रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में कहा तुम नहीं टूटोगे। जिंदगी में जब मुश्किल आए, नबी सल्लम पे बदर की मुश्किल आई थी ना, सारे काम किए, सहाबा को उनकी जगह दी, नॉमिनेट किया, सफबंदी कराई, कर करा के जाए नमाज पे आके खड़े हो गए अपने अरीश पे, और रो रो के कह रहे थे कि अल्लाह मैंने ये बड़ी मुश्किल से चंद हीरे जमा किए हैं, आज अगर ये जमात टूट गई तो दुनिया में तेरा कोई नाम नहीं लेगा। अबू बकर को तसलियां देनी पड़ रही थी कि अल्लाह के नबी गम ना कीजिए, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। रिक्कत की वजह से आपके कंधों पे पड़ी हुई चादर बार बार गिर रही थी, और अबू बकर उसको उठा उठा के ऊपर रख रहे थे। कोई गम आपकी जिंदगी में हो, आते हैं जिंदगी में, छोटे बड़े सबके आते हैं, महसूस हो ना हो वो और बात है। बस ऐसे वक्त में वजू और जाए नमाज। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी को जब कोई मामला पड़ता था, इजा हजब अमरुहु, जब उनका काम, उनके मामलात, उनके हालात सख्त होते थे, तो आप भागते थे नमाज की तरफ, नमाज पढ़ लो थोड़ा सा सुन्नत नफिल इस तरह से, क्योंकि वो फायदा होगा। और बाकी रह गए कि वो लोग जो ये सब भी करते हैं और उनको फायदा नहीं होता, तो हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक गिरोह के बारे में फरमाया, यकरऊन अल कुरआना वला यजावजु हनाजिरुहुम, वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। आप कहते हैं कि हलक क्या होता है? आखिरी मखरज है, हरूफ हलक ही पढ़ते हैं ना, ऊपर नीचे भी, ये आखिरी हलक है, इसके नीचे कोई मखरज नहीं है। कहते हैं पढ़ेंगे बड़े खूबसूरत तरीके से, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा, यानी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा, और वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। और आप कहते हैं कि ये रिवायत कहाँ है? बुखारी, मुस्लिम और मौता इमाम मालिक में। तो हम अपने इस पढ़ने पे मान ना करें। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा आमन बिल कुरआनी मन इस्तहिल्ला महारमहू, कुरान पर ईमान ही नहीं लाया वो शख्स जिसने इसकी हराम की हुई चीजों को हलाल कर लिया। ये तिर्मिजी की रिवायत है हजरत सुहैब रोमी से। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान पढ़ना हमें और भी गुनाहगार कर दे। वही याद कर लें अशआर जो चंद दिन पहले सुनाए थे आपको, कि तेरे ये सजदे तुझे काफिर ना करते, तेरा दिल कहीं और, तेरी सोच कहीं और, झुकता तू किसी और के आगे और ख्याल तेरा किसी और के साथ है। हदीस में आता है, अल कुरान हुज्जतुल्लक अव अलैक, कुरान या तो तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, या तो ये कल मेरे हक में गवाहियां देगा इंशाल्लाह, या मेरे खिलाफ हुज्जतें बनाएगा कि जब वक्त पड़ता था तो ये कुरान को दूसरी तरफ करके अपनी मसलहतों में आ जाती थी। तो इंसान की असल कीमत पता ही कब चलती है, जब वो हकीकत में अमल की तराजू में तुलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें उस दिन शर्मिंदा ना करे, उस दिन रुसवा ना करे। और आखिरी बात करके अगली आयत पे चलूंगी कि अगर आज आपको अपनी नस्लों के बिगाड़ का फिक्र है, बाहर के माहौल की पोल्यूशन का फिक्र है, होमोसेक्सुअलिटी के फितनों का डर है, हुसन बरहना होकर सरे आम जलील हो रहा है, तो फिर आप भी अपने बेटों भाइयों बेटियों उनको इन दो हथियारों के साथ बांध दीजिए कि उत्लुमाओ ही या मिनल कुरआन या उत्लुमाओ ही या मिनल किताब। यही चीज आपकी नस्लों को बचाएगी। और अगर ये चप्पू नहीं उनके हाथ में, तो बुराइयों के इस समंदर में उनकी जो कश्ती है ना, वो फिर अल्लाह ही बचाएगा तो बचेगी, हमारे तौर पे तो पता नहीं बचती है कि नहीं बचती। बहुत सारे वाकयात इस पे दर्स भी काफी दफा दिए हुए हैं कि क्या हालात थे वो लोग जिनकी नमाजों ने उनको वाकई बदल दिया। दिल के साथ जब नमाजें पढ़ी जाती हैं तो फायदा होता है, और अगर नमाजें बस ऊपर ऊपर से एक मश्क के तौर पर कर दी जाए तो बस फिर एक एक्सरसाइज होती है और कुरान सिर्फ एक लिप सर्विस बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की तौफीक दे। हजरत अबू बकर कुरान पढ़ते थे तो लोग रोते थे, रजुलन बुकान उनका लकब है, क्योंकि वो खुद कुरान दिल से पढ़ते थे। और आज भी याद रखें, सिर्फ उसका कुरान सुन के आप रोएंगे जो दिल से पढ़ेगा, चाहे वो तिलावत हो चाहे वो तफसीर हो। जिन बातों को दिल पर लिए बगैर ऊपर ऊपर से मुश्किलात से गुजार दिया जाता है ना, कभी आंख नहीं भीगेगी। इसके अंदर अपना दिल लाना चाहिए। जिक्र अल्लाह की जो बात है, इसके चंद पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये जो बात कही गई कि वाला जिक्र अल्लाह ही अकबर, जिक्र अल्लाह का अच्छा है बड़ा है, तो इसके कुछ स्टेप्स मुफस्सरीन ने नोट किए हैं, उसको भी समझ लें, क्योंकि ये मजमून अहम बहुत है। और आप कह सकते हैं कि पहली आयत है ना बारे की, तो इसमें फिर हमारे लिए जो सबक है वो भी तो बहुत अहम होगा ना, क्योंकि हमने इसके वजीफे बना दिए, इतनी दफ़ा ये हुक्म पढ़ लो, ये आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो, इस तरह कर लो। तो जिक्र जब कहते हैं ना कि आप और मैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो ये किस लिहाज से होता है, कहाँ इसको देखा जा सकता है? पहली बात क्या है कि अल्लाह का जिक्र उस नमाज से बरतर है जिसको अल्लाह के जिक्र के बगैर पढ़ते हो, बात वाज़े। फिर दूसरी बात ये कि असल जिक्र क्या है, नेकियों पे उभारने वाला और सबकत इलल खैरात पर आमादा करने वाला। फिर एक इसका और मतलब ये है कि जिक्र इतनी बड़ी चीज है खैरुल आमाल कि इंसान का अपना ही कोई और अमल उससे नहीं बढ़ सकता। और जो तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हें याद करता है, तो ये तो फिर उससे ही बहुत बड़ी बात है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हो एक सहाबी थे, इनकी बीवी कहती हैं कि अल्लाह ताला की याद नमाज तक महदूद नहीं, बल्कि इसका दायरा इससे बहुत ज्यादा वसी है। जब आदमी रोजा रखता है या जक़ात देता है या कोई नेक अमल करता है, तो ला मुहल्ला वो अल्लाह ही को याद करता है, तभी तो उससे वो नेक अमल सादर होते हैं, सच है कि नहीं? इसी तरह जब आदमी किसी बुराई के मौके पर सामने आने से परहेज करता है, तो ये भी तो अल्लाह की याद का नतीजा है। इसलिए याद इलाही एक मोमिन की पूरी जिंदगी पर हावी है, बात वाज़े। पुलिस वाला याद रहता है तो फिर इंसान सीट बेल्ट बांध ही लेता है ना, क्या सिर्फ पुलिस मैन को देखकर हम सीट बेल्ट बांधते हैं, बंदी रखते हैं, फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं? नहीं करते। तो एक छोटे से पुलिस मैन का इतना खौफ और इतना डर हो, तो क्या फिर हमें अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के फरिश्तों का और उनकी पकड़ का खौफ इससे ज्यादा नहीं होगा? अल्लाह ताला हमारी नमाजों को असर वाली कर दे। वरना याद रखिए कि नमाज पढ़ना और बुराइयों से ना रुकना ऐसा है कि दवाई तो खा रहे हैं लेकिन असर कोई नहीं हो रहा, तासीर नहीं। दवा के साथ एक और क्या चीज होती है, परहेज। तो परहेज ना हो तो दवा का क्या फायदा? तो फहश और मुनकर से परहेज ना करें तो नमाजें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। अकीम के लफ्ज में नमाज को कायम करो, इसमें क्या कुछ आता है इसको भी देख लीजिए। नंबर एक, नमाज पढ़ो तो इखलास के साथ पढ़ो। फिर तहारत हो यानी वुजू अच्छा हो, दिल की तहारत हो यानी दिल में किसी के बारे में बुरे ख्यालात ना हो और अल्लाह के सिवा किसी की तरफ ख्याल ना जाए। फिर इसी तरह बाजमात नमाज वक्त पर पढ़ी जाए। फिर इसी तरह नमाज के जो अरकान हैं, किरत रुकू कौमा सजदा, उसमें इतदाल हो इत्मीनान हो। फिर खुशियो खुजू और रिक्कत की कैफियत हो। फिर इसी तरह पाबंदी के साथ पढ़ी जाए। और सातवां दर्जा कह के रिज़्क हलाल के अहतमाम हो, जब ये सात रात जरूर होंगे, वरना तो अल्लाह ताला ही रहम कर दे हमारे ऊपर। اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کیا یہ آیت کا ٹکڑا مجھے اپنے اوپر ایک حجت نہیں لگا؟ 3 سیکنڈ تک سوچیں، میری نماز ایسی ہے، میرا ذکر اذکار، جب میں ایون دعائیں بھی پڑھتی ہوں، بعض لوگ کتابوں سے دعائیں پڑھ لیتے ہیں، بس ایک طرف نان سٹاپ شروع ہو گیا، عادت ہے. ایک ہوتا ہے کتاب اس لیے کھولیں کہ کوئی رہ نہ جائے، وہ اور بات ہے، اچھی بات ہے کھول کے پڑھیں، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، لیکن آنکھیں بند، کان کہیں، دل کہیں، بس پڑھ لیے 4 صفحے، وہ ایسے ہی جیسے بس پہاڑے پڑھے اس طرح وہ بھی پڑھ لیے. تو ورنہ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں، جانے کی، آنے کی، گھر میں آنے کی، صبح کی، شام کی، گھر کپڑے بدلو، شیشہ دیکھ لو، باتھ روم میں جاؤ. یہ ہے اصل میں ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا. اور جب یہ ہو جائے گا تو یاد رکھو اللہ تمہیں جانتا ہے. یہ تھی پسے ہوئے مسلمانوں کو پہلی ہدایت.
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.